नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में। और घड़ी में समय हुआ है 8:30 बजे का। ये समय होता है खेल जगत की तमाम खबरों को समेट कर लाने का, उन पे चर्चा करने का। स्वीकार कीजिए लवलीन निगम का नमस्कार। और खेल खबरों पे चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गिरीश बुबना। गिरीश नमस्कार, स्टूडियो में आपका स्वागत है।
नमस्कार लवलीन जी।
तो गिरीश, आईपीएल में चेन्नई और कोलकाता जो है आमने सामने हैं, और देखा जाए तो कोलकाता की हालत कोई खास अच्छी नहीं है। 13वां ओवर 5 विकेट यानी आधी टीम जा चुकी है और 87 सिर्फ स्कोर बोर्ड पे अभी रन टंगे।
बहुत ही बढ़िया, यहां पर टॉस जीतकर जो गेंदबाजी का फैसला लिया है ऋतुराज गायकवाड जो कप्तान है चेन्नई सुपर किंग्स के, और कोलकाता नाइट राइडर्स लगातार पिछले 3 मुकाबले जीतकर यहां पर खेल रही है चेपॉक में, और उस लिहाज से जो रणनीति बनाई गई है इनको आज घेरने की, खासकर सुरेंद्र नारायण की, वो कामयाब हुई है। तो इस लिहाज से आधी टीम जो है पवेलियन वापस लौट चुकी है, और आप देखें तो पावर प्ले में केकेआर जो है सबसे सफलतम टीम में एक मानी जा रही है इस संस्करण में।
जी, तो तमाम खबरों पर चर्चा करेंगे। पहले सुर्खियां। आईपीएल में चेन्नई सुपर जायंट्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से जारी। सुमित नागल एटीपी मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट के दूसरे दौर में। कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट के चौथे दौर में ग्रैंड मास्टर डी गुकेश और शीर्ष वरीयता प्राप्त अमेरिका के फाबियानो करुआना के बीच मुकाबला ड्रॉ। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप कल से चीन में शुरू, मुख्य मुकाबले बुधवार से। जी, और आईपीएल की बात करते हैं। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला चल रहा है कोलकाता नाइट राइडर्स से। जैसे अभी हमने बोला, चेन्नई ने टॉस जीता था, कोलकाता से पहले बल्लेबाजी करने को कहा था, और कोलकाता की टीम जैसे हमने बताया था 13 ओवर हो चुके हैं, 88 रन बनाए हैं, 5 विकेट उनके आउट हो चुके हैं। शॉर्ट 0 पे चले गए, सुनील नारायण 27 पे चले गए, रघुवंशी 24, श्रेयस अय्यर अभी खेल रहे हैं 13 रन पर। और अगर उधर बात की जाए, हम बात करें चेन्नई सुपर किंग्स की, तो 3 विकेट जो है जडेजा के खाते में गए हैं, बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं वो।
अब बिल्कुल, जडेजा जो है अभी काफी बल्ला उनका बहुत ज्यादा चल नहीं रहा है। यहां गेंदबाजी जो है 4 ओवर उन्होंने अपना खत्म कर लिया स्पेल, और 18 रन देके 3 विकेट, तो सबसे सफलतम गेंदबाज चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। और लवलीन जी, 2 हफ्ते के बाद सीएसके अपने घर में वापसी कर रही है। इसके पहले दोनों ने जो टूर्नामेंट की शुरुआत हुई थी, लीग की शुरुआत हुई थी, 2 मैचेस जो है वहां पर जीतने के बाद फिर 2 मैच अवे खेले, दोनों मैच हार गए, और अब वापसी कर रहे हैं चेपॉक में। और चेपॉक में पता ही है कि रिकॉर्ड अच्छा है, लेकिन हालांकि पिछले साल जब केकेआर और सीएसके का मैच हुआ था वहां पर केकेआर विजेता घोषित हुई थी, लेकिन जो इस मुकाबले से पहले कहा जा रहा था कि कैसे रोका जाए केकेआर को, और सुनील नारायण को वहां पर जो इनके मेंटर है गौतम गंभीर, उन्होंने उनका स्पॉट एक पिंच हिटर के तौर पर वापस उनको एक बल्लेबाजी क्रम में ऊपर लाए, और इसका नतीजा ये हुआ कि केकेआर जो है बड़े टोटल्स बोर्ड पे टांगने में सफल रही थी। आज वहां पर वो भी वापस उसी स्थिति में थे, लेकिन जो रणनीति थी यहां पर सीएसके की और उनके गेंदबाजों की, वो कारगर गई। आप देखिए, फिल सॉल्ट 1 रन पे आउट, 1 रन टीम का जो स्कोर था उस पर आउट होने के बाद लगभग 55 रन की साझेदारी हुई वहां पर, और फिर उसके बाद एक के बाद एक विकेट गिरे, जिस लिहाज से वापसी की सीएसके ने इस मैच में।
केकेआर की बात की जाए, 3 मैच खेले, तीनों जीते हैं, और उनका नेट रन रेट भी बहुत अच्छा है, प्लस में है, और अगर ये मैच जीत जाते हैं तो राजस्थान रॉयल्स से टॉप पे वो पहुंच सकते हैं। उधर सीएसके 4थे नंबर पर है, तो शायद यही रणनीति सीएसके की रही होगी कि भाई अब केकेआर पे थोड़ा लगाम लगाएं।
उसमें सबसे बड़ी भूमिका टॉस की भी रही है, क्योंकि आज ऋतुराज गायकवाड फाइनली टॉस जीते और वहां पर उन्होंने गेंदबाजी लिया, क्योंकि जो दूसरी पारी है वहां पर ड्यू आएगा, और उस लिहाज से केकेआर के जो गेंदबाज हैं उनको ग्रिप करने में मदद नहीं मिलेगी। तो आप देखिए, जब आप बात कर रहे थे केकेआर की, केकेआर ने जो 3 मैचेस जीते हैं, डीसी दिल्ली कैपिटल्स को 106 रन से हराया, फिर उसके बाद आरसीबी को 7 विकेट से हराया, और एसआरएच को 4 रन से हराया। तो इस लिहाज से अब जब गौतम गंभीर जुड़े, वहां पर चंद्रकांत पंडित है, अभिषेक नायर है, मतलब एक लिहाज से काफी एक्सपीरियंस टीम जो है उन्होंने बदलाव किए, उसके बाद ऊपर सुनील नारायण खेल रहे हैं, नीचे रिंकू सिंह आ रहे हैं, और श्रेयस अय्यर जैसे प्लेयर है, तो काफी एक अनुभवी टीम है। लेकिन यहां पर अभी मुझे लग रहा है कि सीएसके ने इस मैच में तो कम से कम पकड़ बना ली है।
जी, कल की बात करें अगर गिरीश, कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने गुजरात टाइटन्स को 33 रन से हराया। लखनऊ सुपर जायंट्स ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 163 रन बनाए थे, स्टाइनिस ने 58, केएल राहुल ने 33 रन बनाए। गुजरात की तरफ से उमेश यादव, दर्शन नालकंडे ने दो दो विकेट लिए। जीत के लिए 164 रन का लक्ष्य था। गुजरात टाइटन्स की पूरी टीम 130 रन पर सिमट गई। सुदर्शन ने 31, तेवतिया ने 30 और यहां सुपर जायंट्स के यश ठाकुर को क्रेडिट जाता है जिन्होंने 5 विकेट लिए। तो गुजरात और लखनऊ दोनों ऐसी टीमें और यहां पर हार का सामना करना पड़ा।
मतलब केएल राहुल 163 का जो स्कोर है, कम स्कोर, उसको डिफेंड किया उन्होंने, जीटी को 130 के कुल योग में ऑल आउट। तो लेकिन इसमें बात हो रही थी, मयंक यादव की सब बात कर रहे थे, इतने तेज तर्रार गेंदबाज है, हालांकि उनको एक ओवर के बाद ही जो है वहां से मैदान छोड़ना पड़ा, एक साइड स्ट्रेन था उनको। अभी तक उनके खबर ये आ रही है, हालांकि जो अब तक बताया गया है कि जैसे कि अब तक वो कुणाल पांड्या ने बोला कि वो ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहां पर अभी तक पूरा स्थिति स्पष्ट नहीं हुई। यश ठाकुर जो थे स्पिनर है, उन्होंने 5 विकेट लिया, पहली बार उनको 5 विकेट का ये हॉल मिला। तो इस लिहाज से आप देखिए, केएल राहुल जो 33 रन बना के 31 गेंदबाज, लेकिन मार्कस स्टोनिस ने 58 रन की पारी खेली, जिस लिहाज से 163, लेकिन उसके बाद जब यश ठाकुर, कुणाल पांड्या ने भी 3 विकेट लिया, रवि बिश्नोई ने भी एक शानदार कैच पकड़ा, 1 रन देके 8 रन ही दिए, 1 विकेट लिए 8 रन देके। इस लिहाज से एलएसजी जो है इन्होंने यहां पर मैच जीतने में कामयाब हुई।
कल खेलेंगे पंजाब और हैदराबाद आमने सामने होंगे, दोनों जो है लगभग चौथे पांचवें स्थान पर हैं, समय रहेगा इस पर चर्चा करेंगे। इससे पहले रैकेट की दुनिया की ओर चलते हैं, सुमित नागल की बात करते हैं हम। गिरीश, सुमित नागल ने 38वें नंबर के खिलाड़ी माचियो आर्नाल्डो को हराकर पहली बार एटीपी मास्टर्स मोंटे कार्लो टेनिस टूर्नामेंट के दूसरे दौर में प्रवेश किया है। भारत की शीर्ष वरीयता प्राप्त सिंगल्स खिलाड़ी हैं। नागल माचियो आर्नाल्डो को 5-7, 6-2, 6-2 से हराया। दूसरे दौर में खेलेंगे डेनमार्क के होलगर रूने से, जो विश्व रैंकिंग में 7वें स्थान पर है। ये तो खैर आज की जीत की बात हो गई, लेकिन सुमित नागल ने कल जरूर इतिहास रचा था गिरीश, जब 42 साल बाद इस टूर्नामेंट के मुख्य ड्रॉ में पहुंचने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने थे। इनफैक्ट शायद 82 की बात हम कर रहे हैं, रमेश कृष्णन ने जब मुख्य ड्रॉ में जगह बनाई
जी 1977 में, विजय अमृतराज ने भी बनाई थी, उसके बाद रमेश कृष्णन 1982 और उसके फिर 42 साल के बाद सुमित नागल ने। तो सुमित नागल की जो इस ड्रॉ में स्थान बनाने की वजह से अभी खबर भी आएगी कि ये दो जो पायदान है इनकी रैंकिंग जो है
वो
बेहतर हो गई, अब 93, पहले 95 भी थी, अब 93 पे हो गई। लेकिन हालांकि जो अब ये आज इन्होंने जो मुकाबला खेला, जो पहला सेट था इनका अरमांडी के खिलाफ, वो पहला सेट ये मतलब एक तरह से आगे जा रहे थे, फिर उसको उन्होंने ब्रेक किया, फिर उसके बाद 5-7 से हारे, लेकिन दूसरे सेट में इन्होंने 2 बार ब्रेक किया और 6-2 से जीते, फिर तीसरे सेट में 6-4 से करीब 2.5 घंटे का मुकाबला चला। पहला जो सेट था वही काफी संघर्षपूर्ण रहा,
हम बाकी तो 6-2, 6-4
हाँ एक तरफा रहा, लेकिन उन्होंने ब्रेक किया और अपने हौसला नहीं हारा। लवनीन जी, अभी 2-3 महीने पहले ही मैं इनके साथ लगातार 10 दिन पुणे में था, वहां पर एक ये बेसिकली लीग मुकाबले जो होते हैं जैसे आईपीएल की तरह, वहां पर टेनिस प्रीमियर लीग है, वो दूसरा उनका फॉर्मेट है। तो वहां पर ये रामनाथन से हार गए, फिर उसके बाद निकी पनुचा से हार गए और काफी मायूस थे, लेकिन फिर उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे मेहनत करनी है, आगे आने वाले इवेंट जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है वहां पर उन्होंने जगह बनाई। उसके बाद एटीपी मास्टर 1000 वहां पर ये पहले राउंड में जीते, फिर दूसरे राउंड में, काफी बड़ी एक सफलता मान सकते हैं भारतीय टेनिस के लिए
जी। शतरंज की बात करें, कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट के चौथे दौर में ग्रैंड मास्टर डी कुकेश और शीर्ष वरीयता प्राप्त अमेरिका के फाबियानो कारुआनो के बीच ड्रॉ रहा मैच। विदित गुजराती जीत गए। आर प्रज्ञानंदा और अमेरिका के हिकारु नाकामुरा के बीच भी मुकाबला ड्रॉ रहा, रिपोर्ट जागृति की।
अजरबैजान के निजात अबासोव और फ्रांस के फिरोजा अलीरेजा की बाजी भी बराबरी पर छूटी। नेपोमनियाची सफेद मोहरों से खेलते हुए दूसरी जीत से 3 अंक के साथ टूर्नामेंट में बढ़त बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उनसे आधा अंक पीछे करुआना और गुकेश 2.5 अंक के साथ दूसरे स्थान पर हैं। प्रज्ञानानंदा 2 अंक के साथ चौथे स्थान पर हैं, जबकि विदित अबासोव, अलीरेजा और नाकामुरा 4ों के 1.5-1.5 अंक हैं। महिला वर्ग में आर वैशाली ने रूस की अलेक्जेंड्रा गोरियाचकिना से ड्रॉ खेला, लेकिन कोनेरू हम्पी को सबसे कम रैंकिंग वाली और सबसे युवा खिलाड़ी बुल्गारिया की नुर्गयुल सेलिमोवा से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के बाद हम्पी 1.5 अंक के साथ संयुक्त रूप से 6ठे स्थान पर खिसक गई हैं। चीन की झोंगी टेन ने रूस की कैटरीना लेगनो के खिलाफ ड्रॉ खेलकर 3 अंक के साथ बढ़त बनाई हुई है। वैशाली, सेलिमोवा और लेगनो 2 अंक के साथ संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर हैं। इससे पहले गुकेश ने करुआना के साथ मुकाबले में काले मोहरों से खेलते हुए दबाव का अच्छी तरह सामना किया, लेकिन
तो देखा जाए ये सारे टूर्नामेंट ये प्रज्ञानंदा हैं, आरवेशाली हैं, लेकिन पहले बात करूं मैं अगर कुनेरू हम्पी की, उनका हारना थोड़ा अपसेट लगा क्योंकि कहीं ना कहीं दिखा दिया उनकी तरफ जो दूसरी तरफ खिलाड़ी थी कि भैया तुक्के से नहीं आई है बुल्गारिया की खिलाड़ी।
बिल्कुल 20 साल की है, युवा खिलाड़ी है और ये जो मतलब एक तरह से रहा मिक्स्ड बैग आप कह सकते हैं भारतीय खिलाड़ियों की, भारतीय शतरंज खिलाड़ियों के लिए जिसमें से दो हारे तीन ने ड्रॉ किया। तो ये टूर्नामेंट काफी महत्वपूर्ण है, जो हमारे श्रोता उनको बता दें कि इसमें जीत के बाद जो विश्व स्वतंत्र चैंपियनशिप होगी उसमें होंगे 8 खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे हैं और कार्लसन इसमें वो क्वालिफाई कर गए थे, उन्होंने फिर बाद में नाम वापस लिया। तो राउंड रॉबिन होगा, हर एक को एक से खेलना है और उसके बाद जो विजेता होगा वो अगले पायदान में 2000 खेलेगा।
प्रज्ञानंदा भी देखा जाए आपको हर दौर के बाद अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी बहन आर वैशाली भी लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है।
भाई बहन की जोड़ी ने कमाल किया हुआ है, ड्रॉ खेला हालांकि कफ होता है लेकिन काफी ये जो
यहाँ एक से एक दिग्गज खिलाड़ी
भी है। बिल्कुल
बैडमिंटन की बात करें, बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप कल से चीन में शुरू हो रही है, मुख्य मुकाबले होंगे बुधवार से शुरू। वैष्णवी की रिपोर्ट।
पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी शीर्ष वरीयता प्राप्त और मौजूदा चैंपियन जोड़ी इस टूर्नामेंट से हट गई है। भारत के पदक की उम्मीदें अब सिंगल्स खिलाड़ियों पर रहेगी। ये टूर्नामेंट पेरिस ओलंपिक क्वालिफिकेशन रैंकिंग अंक देने वाला आखिरी टूर्नामेंट है। सिंगल्स में पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन, एचएस प्रणॉय और किदाम्बी श्रीकांत की चुनौती रहेगी। महिला वर्ग में दो बार के ओलंपिक पदक विजेता सिंधु अपने अभियान की शुरुआत मलेशिया की गो जिन वेई के साथ खेलकर करेंगी। सिंधु को शीर्ष वरीयता प्राप्त आन से यंग, ओलंपिक चैंपियन यू फेई, ताई जू यिंग, अकाने यामागुची और ही बिंग जियाओ जैसी शीर्ष खिलाड़ियों की मौजूदगी वाले टूर्नामेंट में एक बार फिर खुद को परखने का मौका मिलेगा। सिंधु फ्रेंच ओपन क्वार्टर फाइनल तक पहुंची थी। स्पेन मास्टर्स टूर्नामेंट में उनका सफर ज्यादा दूर तक नहीं चला। थाईलैंड की सुपानिदा कैथोंग के साथ मैच में उनकी हताशा नजर आई। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन को पहले ही दौर में शीर्ष वरीयता प्राप्त शी युकी की कड़ी चुनौती का सामना करना है। वे फ्रेंच ओपन और ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में जगह बनाने के बाद पेरिस ओलंपिक में जगह लगभग पक्की कर चुके हैं। एचएस प्रणॉय अपना अभियान ल्यू गुआंगझू के खिलाफ कर शुरू करेंगे और चीन की खिलाड़ी के खिलाफ 3 हार का बदला चुकता करने का प्रयास करेंगे। दुनिया के 27वें नंबर के खिलाड़ी किदाम्बी श्रीकांत के सामने दुनिया के 3रे नंबर के खिलाड़ी और 2रे वरीय एंटनी गिंटिंग की कड़ी चुनौती है। युवा भारतीय खिलाड़ी प्रियांशु राजावत को पहले दौर में मलेशिया के ली जीजिया से मुकाबला करना है।
तो देखा जाए जैसे कि अभी बताया वैष्णवी ने, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी चिराग शेट्टी नहीं खेल रहे हैं तो पदक की उम्मीदें जाहिर तौर पर सिंगल्स में होंगी। सिंधु पेरिस ओलंपिक के लिए भले ही क्वालिफाई कर पाई हैं लेकिन बहुत जरूरी है उनके लिए ये जीत ताकि एक जीत का मोराल बूस्ट लेते हुए जाए।
हाँ, पहला ही राउंड उनका वर्ल्ड नंबर 33 जो है मलेशिया की ग्योजुन वी से होगा और सिंधु ने उनको 4-1 से पहले हरा चुकी है अब तक जो रिकॉर्ड रहा हुआ, और अगर ये मैच जीती है तो फिर चाइना की हेनयू से उनका मुकाबला होगा। और बैडमिंटन एशिया जो टीम चैंपियनशिप हुई हाल ही में उनको वो 5 बार वहां भी 5वीं बार वो हराया था वहां पर, और फिर अगर यही सब अगर आगे बढ़ी तो फिर जापान की यामागुची या थाईलैंड की इंटेंटोन से उनका मुकाबला हो सकता है। तो इस लिहाज से सिंधु के लिए ये जो साल ये आखिरी टूर्नामेंट है पेरिस ओलंपिक से पहले जहां पर सभी खिलाड़ियों की रैंकिंग और उनके प्रदर्शन के आधार पर और आगे परख भी लेंगे और उसके बाद, लेकिन जो लक्ष्य सेन है वो फ्रेंच ओपन और ऑल इंग्लैंड के सेमीफाइनल तक पहुंचे थे तो इस लिहाज से वो उनका भी वो जो आप एकल मुकाबले की जो दावेदारी होगी उनकी तरफ से होगी। एचएस प्रणॉय थोड़ा सा वो चोटिल और थोड़ा सा वहां पर उनका मुकाबला जो होगा वो चीन के लुजगोंग यू से होगा। तो प्रणॉय 3 बार इनसे हार गए हैं तो इस लिहाज से यहां पर इनसे प्रदर्शन बेहतर करने की उम्मीद रख सकते हैं
रहेंगे और लक्ष्य सेन युवा खिलाड़ी प्रियांशु राजावत से भी हम यही उम्मीद करेंगे। हॉकी इंडिया ने आज राष्ट्रीय शिविर के लिए 33 सदस्यीय महिला हॉकी टीम की घोषणा कर दी है। ये टीम बेंगलुरू में भारतीय खेल प्राधिकरण साई में 16 मई तक प्रशिक्षण जारी रखेगी और देखा जाए ये दल उस टीम की दौड़ में होगी जो भविष्य के लिए कोचिंग शिविर और अंतर्राष्ट्रीय दौर में भाग लेंगे।
हाँ, प्रो लीग होगा जो मई से शुरुआत होगी, वहां भारतीय टीम बेसिकली एंटवर्प जो बेल्जियम और लंदन में जाएगी, वहां अर्जेंटीना, बेल्जियम, जर्मनी और ग्रेट ब्रिटेन से खेलेगी। तो काफी चुनौती भरे मुकाबले इनके लिए आने वाले
हैं। और घड़ी की सुइयां इशारा कर रही है विराम देने का। आप हमारे स्टूडियो में गिरीश, तमाम खेल खबरों पर चर्चा हुई उसका धन्यवाद।
शुभरात्रि।